परमहो राधिका माधवासम प्राप्तो जस्य प्रथिति कृपया श्री गुरु वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय श्री लोकनाथ दास गोस्वामी का तिरोभाव उत्सव है। आज ही के दिन वो इस जगत को छोड़ करके भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। वैष्णवों की आविर्भाव तिथि और तिरोभाव तिथि, उनका जन्म और संसार को छोड़ना, दोनों ही जगत के लिए पवित्र कार्य हैं। जिस काम के लिए वो इस जगत में आते हैं, उसी काम के लिए फिर इस जगत से चले भी जाते हैं। दोनों एक तात्पर्य है। जो लोग भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, वो लोग वैष्णवों का तत्व, भक्तों का तत्व पहले समझेंगे, तब इन चीजों को समझ सकते हैं और भजन में प्रवेश कर सकते हैं। केवल हरिनाम ग्रहण करने से ही या मंदिर की सेवा करने से भी भक्ति नहीं हो जाती पूर्ण रूप से। भक्ति के बहुत से स्तर हैं। पहले कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, ऐसी भक्तियां होती, उसी को लोग समझ लेते हैं कि ये शुद्ध भक्ति है। यथातथा में ये स्वरूप सिद्धा शुद्ध भक्ति नहीं है। जब तक वैष्णवों के, जो उत्तम कोटि के जो वैष्णव हैं, उनका संग नहीं किया जाए। संग माने क्या? संग उनके साथ रहना, खाना पीना, उनके जैसा रहना। स माने सम्यक रूप से, ग माने गमन। वो जैसे जिस भावना को लेकर के, जिस भावना से, भाव से भजन करते हैं, उनका बाहरी आचार कैसा है और उनका अभ्यांतरिक आचार कैसा है, ऊपर से अपने इंद्रियों के द्वारा भक्ति का कैसे अनुशीलन करते हैं और भीतर से कैसे करते हैं, उनके भाव क्या होते हैं, यदि उनका यह अनुगमन नहीं किया जाएगा तो भक्ति समझ में नहीं आएगी। जिस भक्ति के करने से आत्मा प्रसन्न नहीं होती, वो भी भक्ति नहीं है। भक्ति करने से ही जरूर सुतुष्ट पुष्टि खुद पाए अनुघासम, जयात्मा संप्रसिद्धति, भगवान की प्रसन्नता होगी और हमारी भी प्रसन्नता उसमें होगी, तब तो ये भक्ति होगी। यदि हमको संतुष्टि नहीं है, हमको प्रसन्नता आत्मा में नहीं, हम सब समय दुखी रहते हैं, तो भक्ति नहीं है। अभी भक्ति आरंभ होने के साथ ही साथ में चित्त प्रसन्न रहेगा, संसार की समस्त जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी तरह की ये मन के चिंतित होने का कारण है, वो सब अपने आप भाग जाएगा। ये भक्ति का पहला ये लक्षण है। जयात्मा संप्रसिद्ध सवै पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधुख जे अहेतुक्यव्यविता जयात्मा। हम लोग आते हैं घर छोड़ करके किस लिए, या प्रवचन सुनने आते हैं किस लिए? उनके भीतरी विचारों को हम जान सके और बाहरी जो आचार है उसको भी जान सके। आचार और विचार दोनों, जब तक उनके भीतरी विचारों को हम नहीं ग्रहण करेंगे तब तक उनके साथ में रहने से भी खटमल की तरह खाट में हमारे वैष्णव के रहे या सिर में जुए की भांति रहे कुछ लाभ नहीं, जब तक उनके भीतरी विचारों को हम ग्रहण नहीं करें। इसको कहते हैं साधु सम। साधु का सम्यक रूप से अनुगमन करना बाहरी और भीतरी रूप से। इसको समझने के लिए वैष्णव के चरित्र समझना पड़ेगा। जैसे लक्ष्मी जी की सेवा है, नारायण की सेवा करती है, ब्रह्मा जी कृष्ण की राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जैसे शंकर जी ये रुद्रदेव अपने इष्ट देव की सेवा करते हैं, जैसे हनुमान जी अपने इष्ट देव की सेवा करते हैं, प्रहलाद जी कैसे सेवा करते हैं, नारद जी अपने प्रभु की कैसे सेवा करते हैं, उनकी चित्त वृत्ति को समझना पड़ेगा, उनके संग से और उनका अनुगमन करना पड़ेगा। अनुगमन माने अनुसरण करना पड़ेगा। जैसे अनुकरण न करो, अनुसरण करो, कैसे वो भक्ति करते हैं, उनके अंदर में कैसी भावना होती है, तब तो वो भाई भक्ति है। अनेक लाख जन्म तक वैष्णव के साथ में रहने पर भी खाओ पियो मौज करो और बस वो चले जाएंगे, बस तुम लोग निराश्रय होकर के जाने कहां का तहां फिर चला जाएगा। इसलिए उनके विचारी भीतरी विचारों को ग्रहण करने की चेष्टा करो। ऐसे वसंतों में से लोकनाथ दास गोस्वामी जी का आज तिरुभाव तिथि है। तिरुभाव तिथि का यह तात्पर्य है उन्होंने कैसे साधन भजन किए, उनका बाहरी आचरण कैसा था, उनके भक्ति के भाव क्या थे, उसको आज के दिन में स्मरण करके हम ऐसा ही ग्रहण करने का संकल्प लेंगे, ये विरह तिथि का है। खूब खीर पूरी बनाया, उत्सव करके खाए पिए और ये सब किया नहीं तो वो उत्सव नहीं। आज के दिन हम देखेंगे कैसा उनका जीवन चरित्र था, कैसे वे रहते थे, किस प्रकार से उनका भीतरी भगवान के प्रति प्रीति थी, भीतर से कैसे साधन करते थे, ऊपर से कैसे साधन करते थे। आज इनके संबंध में हम लोग कुछ यहां पर आलोचना करेंगे और उनके आदर्श को ग्रहण करने की हम चेष्टा करें। यदि ये हुआ तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग कुछ हाथ नहीं आएगा। तो आज के दिन में लोकनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु जी के परिकरों में से थे, चैतन्य महाप्रभु जी के, और उनके कुटुंबी थे। कैसे वो उन्होंने घर को छोड़ा, कैसे वृंदावन में आए, क्या क्या किया, उनका जीवन क्या पहलू क्या था, इसके संबंध में अभी ब्रह्मचारी लोग कुछ बोलेंगे, अंत में हम भी कुछ बोलेंगे। बोलिए, संक्षेप में बोलना, खूब अधिक देर मत लगा। की जलपान करो तो इतने तो पूरा आख्यान तो बोले दिलो, तुम्हारा विचार कर बे। लोकनाथ दास गोस्वामी बचपन में महाप्रभु के साथ में रहते थे। लोकनाथ दास गोस्वामी बचपन में महाप्रभु के संगी थे। उन्होंने संन्यास लेने के पहले इनको और भूगर्भ गोस्वामी को वृंदावन में भजन करने के लिए भेजा, और राधा कृष्ण की जो विहार स्थली है, लीला स्थलियां हैं, जैसे राधा कुंड है, नंदगांव है, बरसाना है, वृंदावन है, ये कालक्रम से 5000 वर्षों में यहाँ पर वन जंगल हो गए थे। वो काम्यवन को लोग वृंदावन कहते थे, राधा कुंड का नाम लुप्त हो गया था, श्याम कुंड का नाम लुप्त हो गया था, और भी कृष्ण ने कहाँ कहाँ लीलाएं की, ये भी करी करी सब वन जंगल में परिणत हो गया। महाप्रभु जी ने कहा कि आप दोनों वृंदावन में जाइए, वहां पर भजन करेंगे, और कृष्ण की लुप्त जो तीर्थ हैं, उनके जो लीला स्थली है उनको भी प्रकाश करेंगे। वृंदावन में ही क्यों नहीं भेजा, पुरी में क्यों, वृंदावन में क्यों भेजा? एक आदमी यदि भजन करता है कहीं अपने गांव पर या कहीं किसी दूसरे जगह में, हरि कथा श्रवण करता है, हरि नाम संकीर्तन करता है, साधन भजन करता है, साधु संघ में हरि कथा सुनता है, तो वो धाम वृंदावन ही है। जहां हरि कथा होती है वही वृंदावन धाम है। बात तो ठीक है, तो अभी धाम की एक अपनी खास महिमा है। मान लें कि हम अपने गांव में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में भजन करते हैं, ठीक है, भजन करते हैं, खूब भाव से करते हैं, किंतु गिरिराज जी की कृपा साक्षात उनके निकट में रह करके वो तो नहीं होगा। गिरिराज जी तो आपके पास नहीं है, जमुना जी तो नहीं है, नंदगांव जो नहीं है, इसलिए यहां रह करके सिद्ध क्षेत्र की एक महिमा होती है, जिसमें थोड़े से प्रयास से ही यदि अपराध न हो और कोई भजन करे तो उसकी सिद्धि जल्दी से हो जाती है। यहां तक कि मथुरा के लिए कहा गया है, कान काट लेंगे अभी, कट योर यस बी साइलेंट देयर।
मथुरा के लिए कहा गया
है आगे एक दिन भी ठहरो, ठहर जाओ, एक दिन भी कोई आदमी मथुरा नगरी में वास करे और अपराध नहीं करे, श्रद्धापूर्वक रहे, एक दिन में ही हरि भक्ति उसको हो जाएगी। एक रात्रि के निवास करने से ही हरि भक्ति प्रजाएगी। किंतु यदि वैष्णव अपराध, नमा अपराध, धामा अपराध करता है तो नहीं होगा। अधिकांश साधारण आदमी है, अपराध कर लेते हैं, कुछ धाम के प्रति विश्वास नहीं होता, तो जैसे इसमें क्या होगा, अरे इसमें कितने रिक्शे वाले कैसे गंदे गंदे आदमी हैं, उनका क्या हुआ इतने दिन तक, और मैं एक दिन में रहने से भक्ति हो जाएगी, ये विश्वास नहीं है। किंतु ऐसी श्रद्धा वाले व्यक्ति यदि एक रात भी रहें श्रद्धा पूर्वक, जरूर हर भक्ति हो जाएगी। आज जो यहां रह करके अच्छी तरह से भजन करता है, कैसे, तन्नाम रूप चरितादि सुकृत तनानुक्रमेण रसना मनसी, जो वृंदावन में वास कर वैष्णव के गुरु के आनुगत्य में, उत्तम वैष्णव मुख के द्वारा निरंतर हरि नाम करता है आठों पहर, बिना सोए, बिना खाए, बिना आलस्य के, बिना प्रमाद के यदि कोई भजन करता है वैष्णव के अनुगत्य में, जीवा के द्वारा हरिनाम और मन के द्वारा क्या, कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते हुए, दोनों को मिला करके यदि करे, और ब्रज में रह करके रसिक वैष्णव के अनुगत्य में ठीक वैसा ही भजन करे, यही समस्त उपदेशों का सार है। बहुत जल्दी भजन हो जाएगा, उसकी सिद्धि हो जाएगी, दूसरे जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोकनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आए, केवल कौपीन धारण किए हुए, खाते क्या थे, कभी सूखी रोटी, कभी सूखा चना, कभी वो भी मना, ये चना ना भिगोया हुआ नहीं, ऐसे चने दो चार ले लिए, किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करने का, पालने के लिए बस एक कॉफिन और कुछ नहीं, हाथ में घड़ी भी नहीं और अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं, खाने के लिए किसी के घर में गए वही चना या सूखा रोटी दे दी, उसको पानी में भिजा करके बिना नमक के ऐसे ही जीवन निर्वाह करने के लिए उसे ग्रहण कर लिया। रात भर सोते नहीं, कभी हुआ तो 24 मिनट सोया, कभी वो भी नहीं सोया। क्या करते हैं? दिन रात हरि कथा के चिंतन में रहते हैं, हा राधे हा कृष्ण कहते हुए कभी जमन पर लौटते हैं, कभी रोते हैं और कभी नाम करते 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 भाव विभोर हो जाते हैं। हम लोग को तो रुचि नहीं। अभी हम लोग सोचते हैं जैसे यहां तो बहुत सेवा करना पड़ता है, रसोई बनाओ, ठाकुर जी का पूजन करो, ये करो, इससे अच्छा है जब ब्रज में रहेंगे घी की चिपड़ी हुई रोटी मिल जाएगी और खीर भी और दूध भी वहां पर मिल जाएगा, एक सब्जी बना लेंगे हम वहां पर, ठाट से भजन करेंगे, न किसी का लेना न देना, बस भजन हो जाएगा। एक दिन भी नहीं होगा, एक दिन भी नहीं, पहले वैसा बनो और तब फिर वैसे भाव आएंगे, तब होगा। झूठ मूठ के बैराग्य से एक दिन में बैराग्य निकल जाएगा, भजन नहीं होगा। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं जी हम भी चले जाएंगे खदीर वन में, हम चले जाएंगे राधा कुंड में गोवर्धन में भजन करेंगे और दो दिन के बाद में कोई संगी नहीं जुटा लेंगे, पैसे कुछ बैंक में रखेंगे और फिर वहां से निकल करके संसार में जाएंगे। एक नहीं लाख उदाहरण ऐसे देखे। इसलिए गुरु सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, हरिनाम करो अच्छी तरह से जैसा वो करते थे। कभी माधुकरी मांगा मिल गया, कभी किसी से मांगते नहीं थे, अजाचक वृत्ति कर रखने वाले, रात में सो नहीं रहे, दिन रात घर घर प्रेम में रह करके हा राधे हा कृष्ण इत्यादि करते रहे। इन्होंने श्लोक बतलाया, पूरा नहीं बतलाया, राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च बंसी बटे प्रेमोन्माद वशात अशेष ग्रस्तया। दिन रात अशेष ग्रस्त हो, क्या राधा कृष्ण के प्रेम में उन्माद हो जाता था। कैसे उन्माद? जैसे किसी एक पागल को उन्माद हो जाता है, उन्माद रोग हो जाता है, जिस विचार लेकर के वो उसके हृदय में ठेस लगी है, फिर वैसे ही वो बकता है, अंट संट बकता है उसी को लेकर। ऐसे इनको उन्माद हो गया किस में? दिन रात कृष्ण लीला के चिंतन में, अभी कृष्ण को देखा, अभी कदम्ब वृक्ष की छैया में हमने देखा, जब गए पकड़ने के लिए तब तक हा राधे हा कृष्ण करके गिर पड़े। ये उन्माद ग्रस्त इस प्रकार से, हे राधे आप कहां हैं, ललिते कहां हैं, हे विशाखे आप कहां हैं, हे चैतन्य महाप्रभु आप कहां हैं, भाव में भी भोर होकर के करते थे। देह का शुद्ध बुद्धि, देह की शुद्ध बुद्धि कुछ नहीं, ऐसे यदि हरिनाम, ये भी अभी ऊपर वाला हुआ, भीतर का क्या भाव है? उनका नाम है क्या? मंजरी, मंजूलाली, मंजरी, मंजूलाली के भाव में रह करके राधा जी की सेवा कर रहे हैं। कैसी सेवा कर रहे हैं? तांबुलार्पण पाद मर्दन पयो दाना विशारा, चिंता कर रहे हैं, बैठे यहां दर्शन किया, मनी मन में देखा जी मैंने मानसी गंगा में स्नान किया, पावन सरोवर में स्नान, यमुना में स्नान किया और राधा कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, भीतर भीतर में भजन कर रहे हैं, चित्त द्रवित हो गया और उनकी सेवा में कभी पंखा झल रहे हैं, कभी तांबुल की बीटी बना करके दे रहे हैं, कभी माला ऊपर से हम देखते हैं कि ग्रंथन कर रहे हैं, किंतु उस भाव में वो रह करके कर रहे हैं, सिद्ध अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के करते हैं। ये भजन है रागानुजा। ऐसा नहीं गए माधुकरी दस गांव से मांग लाए और लड्डू पूरी ले लिया, कचौड़ी बना लिया, अपनी एक सब्जी बना लिया, खाया और पास सो गए और रात भर सोते रहे, दिन भर सोते रहे, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। वाह तुम्हारी तबीयत ठीक, क्या हो गया? सर्दी जुकाम लग गई। ये भजन सब नहीं है, ऐसे आदमी कभी लाख जन्म में भी लोकनाथ गोस्वामी का जैसे जाकर के करेंगे नहीं होगा, इसलिए ये आशा छोड़ो ये लोकनाथ गोस्वामी जैसा हम भजन करेंगे। गुरु वैष्णव के निकट रह करके सीखो भजन क्या चीज होता है। साधन और भजन में अंतर है, उन लोगों का साधन नहीं था, उनका क्या था? भजन था। हम लोग अभी साधन कर रहे हैं, अभी चित्त में भगवान के नाम के प्रति रुचि नहीं आई, ये विश्वास नहीं है कि नाम करने से हमारा सब कुछ हो जाएगा, कृष्ण का भजन करने से सब कुछ हो जाएगा, अभी विश्वास नहीं है। इसलिए गुरु कहते हैं चाचा जाओ भिक्षा लाओ, कहते हैं कि ये काम करो, ये मंदिर बनाओ, नहीं तो लोकनाथ गोस्वामी को महाप्रभु कहेंगे मंदिर बनाओ, न उनको कहेंगे ये माधुगृह लाओ, न कहेंगे भिक्षा मांग करके ले आओ। रूप सनातन को कहेंगे अभी हम लोग ऐसे भजन नहीं कर सकते, इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जैसा कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने जैसा कहा है, अभी वैष्णव की सेवा करो जैसे वो प्रसन्न हो, दिन रात सेवा काम करो, कुछ सुकृति पुष्ट हो, उनकी कुछ कृपा हो, तो ये भजन के विषय में प्रवेश करके तब आगे बढ़ेंगे। पहले श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति ये सब हो, तब तो लोकनाथ गोस्वामी बनेगा कि ऐसा ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिन रात सोते नहीं, माधुकरी कभी होता तो मांग लाते, नहीं तो कोई रोटी दे गया होता उसको पानी में भिजा करके बिना नमक के ले लेते, कपड़े वैसे ही एक लंगोटी, रात भर भजन करते, हरि नाम करते, लीला के साथ में संजोग करके करते, चित्त को निविष्ट करते। कोई भी उनके पास आता तो उसे बातचीत नहीं करते, और हमारा क्या है अभी बैठने बैठो हरि नाम करने के लिए तो मन नहीं लगे, यदि थोड़ी देर बैठ जाओ तो फिर इच्छा होगी जी हाथ में माला लेकर के थोड़ा सा वो क्या करें चहलकदमी करें, फिर कोई आ जाएगा उसे दो मुंह बात करें, ये सब भजन नहीं है। अभी साधन में भी हम लोग नहीं पहुंचे, इसलिए सबसे पहले समझिए जी भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इस नाम के करने से हमारी सारी सिद्धियां हो जाएंगी, संसार के सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे अभाव दूर हो जाएंगे, तब फिर नाम का भजन, फिर भगवान का भजन। इस तरह से लोकनाथ दास स्वामी के विचारों को देखो, बैठे हुए हैं हरिनाम कर रहे हैं, दिन रात नींद नहीं, आवेश में रह करके भजन कर रहे हैं, और कोई उनसे पानी मांगने आया पिपासा, वो देख नहीं रहे हैं। परीक्षित महाराज जी जब गए समीक ऋषि के पास में, तो उन्होंने पानी मांगा, उसने नहीं दिया तो गले में सांप लगा दिया, उन्होंने सोचा जैसे देखो तो हमको देख करके ऐसा किया, क्या उनको पता था जी कहां ये समाधि में वहां पर हैं? उनको तो पता था किंतु शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसा ही दिखलाया। इसलिए लोकनाथ दास गोस्वामी को पता ही नहीं जो कौन पानी मांगने और क्या आ रहा है, संसार के दुखों से उनका कोई भी संपर्क नहीं, बहुत ऊंचे हैं। और उस समय में ललिता जी विशाखा जी के अनुगत्य में, रूप मंजरी के अनुगत्य में, वो कौन लाली, वो मंजूलाली के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं और हरिनाम कर रहे हैं, उनके लिए माला गूंथ रहे हैं, उनके लिए पंखा जल रहे हैं, चामर डुला रहे हैं। और उस समय कोई आया पानी मांगने के लिए, तो राधा कृष्ण के लिए जो चमर ढुला रहे हैं, उनकी तांबूल सेवा कर रहे हैं, उसको छोड़ करके किसी आदमी को पानी पिलाना, दोनों में क्या अंतर है, समझो इस चीज को। साधारण रूप में कोई यदि एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, पैर दबा रही है, और उस समय कोई भीख मंगा आकर के भीख मांगे तो देने जाएगी कि नहीं? मर शास्त्रों में ऐसा लिखा है नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, वो इसकी एक कहानी है। तो ऐसे राधा कृष्ण की जो सेवा कर रहा है, उस समय दूसरों की सेवा करने के लिए जाए तो राधा कृष्ण की सेवा को छोड़ करके इतनी ऊंची चीज को और उसकी सेवा करने जाएगा? यदि प्रधानमंत्री यहां आए हो या राष्ट्रपति आए हो, तो उनके जो अंग रक्षक हैं उनको छोड़ करके किसी एक दूसरे की सेवा करने के लिए नीचे जाएंगे, या कोई मारपीट हो रही है झगड़ा तो उसमें जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसी तरह से भगवान की सेवा को छोड़ करके जब दूसरों को पानी पिला रहे थे, ये कर्मी का विचार है, अब इनको कर्म मार्ग से नहीं हुई। इसलिए आजकल बहुत से वैष्णव लोग भगवान करने जा करके प्याऊ पर पानी पिलाते हैं, एक सत्कर्म है, किंतु भगवान की सेवा से इसकी तुलना की जा सकती है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए लोकनाथ दास गोस्वामी ने उनको, नरोत्तम ठाकुर को कहा, अभी तुम जाओ संसार में, अभी पानी पिलाओ, दूसरे कर्म करो, अभी तुम्हारे अभी इस योग्य नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति यहां आकर के ब्रज में भजन करने के लिए अपनी मैया बाप पिता माता सबको धन संपत्ति को छोड़ करके आया और यहां पर भी भिक्षा मांग करके कुछ बैंक बैलेंस करने लगा, लोगों के पास में जाकर के दिन भर बैठता है विषयी लोगों के साथ में, उनके मन के मुताबिक बात करता है, भजन नहीं करता दिन रात, और अच्छी अच्छी चुपड़ी हुई रोटी खाने के लिए चेष्टा करता है, तो क्या होगा? ये भजन नहीं है। इसलिए पहले श्रद्धा हो, ऐसी निष्ठा हो, गुरु की सेवा हो, धीरे धीरे भजन को हम समझें और वैसे ही भजन तब करने की। अभी एक दिन में, एक वर्ष में, 10 वर्ष में लोकनाथ दास गोस्वामी हम नहीं हो जाएंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, पहले अभी तुम बैंगन का खेती करो, उसके बैंगन से ठाकुर जी की सेवा हो, फूल बनाओ, फूल लगाओ और उसे माला गुत करके ठाकुर जी की सेवा तुम्हारी स्वीकृति हो, और नहीं तो हरिनाम नहीं, हरिनाम करते करते संसार की चिंता आएगी। बहुत से लोगों को हम देखते हैं 85 वर्ष उम्र हो गई है और कम से कम तो 40 वर्ष हो गया उनको घर छोड़े, भजन से कोई संबंध नहीं, उसने क्या किया ये क्या किया, बस इसी में रह जाते हैं। किस लिए घर छोड़ा? घर छोड़ा किस लिए? दिन रात भगवान के भजन में मत रहे, संसार की परवाह नहीं, तब तो हो। इसलिए लोकनाथ दास गोस्वामी ने नरोत्तम ठाकुर को कहा, जे तुम जाओ पानी पिलाओ अभी, इसके बाद नरोत्तम ठाकुर जी भी महाप्रभु के परिकर हैं, शिक्षा देने के लिए हो गए और वहां जाकर के विश्व में सर्वत्र भगवत भक्ति का प्रचार किया। दोनों का एक ही तात्पर्य है, भक्ति का प्रचार करके लोगों का उपकार करना और अंतर्निविष्ट चित्त होकर के भगवान का भजन करना, किंतु इनको भी उसी लाइन में आना पड़ेगा। किनको? जो भी प्रचार कर रहे हैं उसी भाव में आना पड़ेगा। महाप्रभु जी ने प्रचार किया और गंभीरा में कैसे रहते थे, एकदम अविष्ट चित्त होकर के। तो इस तरह से लक्ष्य रख करके भजन का हम चलेंगे, भजन सीखने के लिए आए हैं। लोकनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि का भजन सीखो। अभी तुलसीदास जी को भी देखो, काशी में वहां रह करके भजन करते थे, और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी उनकी कुटी का पहरा देते थे, कैसा भजन। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भजन कर रहे हैं और राधा जी स्वयं दूध और चावल लेकर के उनके लिए खीर पकाने के लिए आती है, उनको होश नहीं। ये सब ऐसा होना चाहिए भजन, ये भजन के उन्नत विचार हैं। संसार में रहकर कभी संसार में आसक्ति न रहे, भगवान के भजन में आसक्ति रहे और फिर भगवान के प्रति भजन में, भगवान के प्रति उनकी आसक्ति रहे। इस तरह से इन शिक्षाओं को सुन करके समझ करके ऐसा ही नाम करो, ऐसा ही त्याग और वैराग्य के साथ में भक्ति। जहां भक्ति होगी वहां पर ज्ञान और वैराग्य जरूर रहेगा। भक्ति रूप पद्धति नहीं, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के ये दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य, ये जरूर होगा ही वैराग्य, और भक्ति नहीं हुई वैराग्य होगा ये भी कोई काम का नहीं। इसलिए भक्ति के साथ में जो ज्ञान अपने आप तत्व ज्ञान होता है और वैराग्य होता है वह स्थायी होता है, स्थायी और भक्ति के लिए परिपोषक होता है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, त्यागी, उनकी चित्त वृत्ति सब समय भगवान के चरणों में लगी रहनी चाहिए। तब तो भजन है। इसलिए रघुनाथ उनको नौतम ठाकुर को उन्होंने संसार में भेज दिया। वो गए संसार तो किया नहीं, किंतु भक्ति का प्रचार विश्व में सर्वत्र उन्होंने किया। आज भी उसकी छाप भारत के पूर्वीय प्रांतों में अभी। इस तरह से लोकनाथ दास गोस्वामी का आचार आचार विचार आज यदि हम ग्रहण करके वैसा ही भजन करें, यह सब सीखें, वैसे ही रात में जग करके भजन करें, खाने पीने के प्रति वो क्या खा रहा है वो क्या खा रहा है धर्म में मन जाए, किसी प्रकार से वैराग्य धारण करके रहे। यदि शरीर स्थूल होगा तो भोग की लालसा आएगी, संसार में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान यदि किसी पर कृपा करते हैं ना, तो उसके स्वास्थ्य को खराब करके रोगी बना देते हैं भक्तों को। जैसे शरीर स्थूल ना हो और कामना इत्यादि ना हो, इस तरह से रख करके भाई भगवान का भजन करें। आज समय हो गया है, आज यही तक रहे। वंछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो चैतन्य नाम्ने गौरत्नसि अभी हम लोगों का श्री लोकनाथ दास गोस्वामी के त्रिभाव का उत्सव चल रहा था, इसलिए गुरु और शिष्य वो लोग थे। अब देखो सत शिष्य का लक्षण क्या है। सत शिष्य के लिए देखना पड़ेगा रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र, और सदगुरु का लक्षण देखने पड़ेगा लोकनाथ दास गोस्वामी। नरोत्तम ठाकुर जी बहुत उत्तम कुल में पैदा हुए थे, इसलिए सत शिष्य का उत्तम कुल में पैदा होना जरूरी है। चाहे वो मुसलमान हो, अन्य जाति हो, चाहे चमार धोबी भी हो, कोई बात नहीं, किंतु उसके में भी उत्तम कुल माने माता पिता उसके अच्छे हों, संस्कार वाले हों। संस्कार माने कौन संस्कार, माने उच्च चरित्र का होना चाहिए। जिनका वंश वैसा ठीक नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे देखे जाते हैं। इसलिए नरोत्तम ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, जितने भी आचार्य देखते हो जो शिष्य हुए, सभी लोगों का उन्नत उज्जवल विचार था, अच्छे उत्तम कुल में पैदा हो। पैदा होने के बाद में दूसरा सरल भाषी होना चाहिए, मृदु भाषी, कठोर नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद मृदु भाषी थे, दिए हैं अच्छा, मृदु भाषी होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। चुलकाहट में क्रोध आ जाए, गुरु को भी लात मार दे या गुरु को छोड़ दे, त्याग करे, ऐसा शिष्य नहीं होना चाहिए। ऐसा शिष्य कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। उत्तम कुल में विनयी, मृदुभाषी, सहिष्णु, जितना भी कष्ट आए, कर्ण का जंग छेद दिया कीड़े ने तभी वो चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा होना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष इत्यादि सब छोड़ चुका हो, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य सब छोड़ चुका हो, तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। संसार के क्लेशों को देखकर हमारा कल्याण कैसे होगा, इसकी चिंता करके हमारा परमार्थ कैसे होगा, इसके लिए सदगुरु का आश्रय करने वाला है। स्त्री मर गई, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसे लोग भजन नहीं कर सकते। घर में माता पिता ने बदमाशी के वजह से मारपीट किया, वो भाग करके चले आए और मठ में आश्रय ले लिया, ऐसे लोग भजन नहीं करेंगे। समझ बूझ करके आने वाले परमार्थ के लिए समझा जी, ये संसार में कहीं सुख नहीं है, इसे कल्याण नहीं है, इसके घर में रहते हुए इस चीज को समझे, और समझने के बाद में सदगुरु के पास में आए। कैसे आए? समित पानी, समित पानी अपने हाथों में ले, वो तो गुरु का लक्षण हो गया ऊपर वाला है, अभी नीचे वाला लक्षण है। समित पानी अपने हाथों में, समित समित माने संविधा, संविधा माने क्या? हृदय की सारी जितना प्रीति, प्रीति लेकर के आए गुरु के चरणों में, और अपने को देखे उनको, सदगुरु की परीक्षा करे, एक महीना दो महीना एक वर्ष तक रहे गुरु के पास में, कहीं गुरु असच्चरित्र तो नहीं है, गुरु कहीं अर्थ का लोभी तो नहीं है, गुरु भगवान के नाम में उसको प्रीति तो है, भजन करता है कि नहीं करता है, और हमारे सारी शंकाओं को दूर करने में समर्थ है कि नहीं, और परब्रह्म की अनुभूति संपन्न और संसार से विरक्त हो, ऐसे गुरु के पास में रह करके कुछ दिन ऐसे ही रहे, हरिनाम दीक्षा न ले, उनके आश्रम में सब सेवा करे, और उनको फिर बहुत निकट से परखे, सत्शिष्य का ये। ऐसा नहीं कि स्त्री ने पीठ में झाड़ू लगाई या घर में क्रोधी स्वभाव होने के कारण घर वालों ने हमारा प्रत्याग कर दिया, या मन नहीं लगा, या अधिक सुख भोगने के लिए देखा जी मठ तो बहुत अच्छा ही, कुछ काम नहीं करना पड़ता, यहाँ रहेंगे तो हो जाएगा, बड़ा आराम से रहेंगे, ऐसे शिष्य नहीं है। इसलिए संसार से विरक्त होकर उत्तम कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए गुरु के समीप समिधा लेकर के, श्रद्धा लेकर के जाए। जब ये देख ले, परख ले कि गुरु हमारी सब प्रकार के शंकाओं को दूर कर सकते हैं, और हम जो चाहते हैं भगवत भक्ति, इसको वो दे सकते हैं, परमार्थ दे सकते हैं, कहीं भी उनका चरित्र में दाग नहीं है, निर्मल है, अर्थ के प्रति लोभी नहीं है, मृदुभाषी हैं, सबका कल्याण की कामना करने वाले हैं, उनको देख ले, और देख करके तब उनके चरण में अपने शीर को नतमस्तक कर, फिर उनसे दीक्षा हरिनाम इत्यादि ले। फिर यदि हमारा शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हमारा शरीर का सिर को काट देना पड़े लाख बार, तभी उस गुरु को हम नहीं छोड़ेंगे। ये सब उसमें दृढ़ता हो, हम लाख बार मरेंगे जिएंगे, किंतु ऐसे गुरु को हम छोड़ेंगे नहीं, उनकी आज्ञा का हम बिना विचार किए हुए पालन करेंगे। यदि कुछ शंका उठती है तो हम उनसे पूछ लेंगे, निरा आलस हो उसमें, आलस्य नहीं हो। गुरु जी ने कहा जी देखो, जरा वृंदावन से उस आदमी को बुला लाना, तो शिष्य ने उत्तर दिया यदि नहीं मिले तो मैं तो जा रहा हूं, और अकेले में कैसे जाऊं मैं तो जानता नहीं, और कैसे जाऊं, ट्रेन से जाऊं कि बस से जाऊं कि साइकिल से जाऊं, कैसे जाऊं, और उनका घर का रास्ता तो मैं जानता नहीं, फिर जाऊं और भूल जाऊं तो ऐसे शिष्य शिष्य नहीं है। रूप सनातन जैसा शिष्य हो, रघुनाथ दास गोस्वामी, प्रभुपाद जी जैसा, पहले गुरु को परखा, और इसके बाद में गुरु जी ने अंगीकार नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, मर जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, जमीन पर सोएंगे, गोग्रास भोजन करेंगे, मर जाएंगे, किंतु आप ही से लेंगे, नहीं तो मरी जाएंगे। ये सत्य शिष्य है। प्रभुपाद जी भक्ति गौरकिशोर दास महाराज को कभी छोड़ दिया? उनके प्रति कभी भी अश्रद्धा पैदा हुई? कभी नहीं हुई। ऐसा यदि हो तो ये सत्य शिष्य है। और भी यदि हम गुरु के पास रहते हैं तो और भी उनके यदि शिष्य हैं, उनके प्रति श्रद्धा रहे, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा हो, उनके भी शिक्षा गुरु के रूप में हम मान करके आदर करें। यदि पांच शिष्य पांचों शिष्य से लड़ने लग गए तो गुरु जी के लिए समस्या पैदा कर देंगे। सबके विरुद्ध बगावत और सबके प्रति ये किसी से प्रेम नहीं, ये सत्शिष्य का लक्षण नहीं है। सत्शिष्य कभी भी दूसरे का दोष नहीं देखेगा, कभी नहीं देखे, अपना दोष देखे। प्रभुपाद जी ने कहा जी सहिष्णु बनकर के दूसरों का दोष ना देकर के अपने दोषों को खोज करो और उसे सुधार करने की चेष्टा करो। दूसरा क्या कर रहा है ऐसा मत देखो, तुम इस देखने के लिए भगवान ने तुमको नहीं भेजा, शासक नहीं बना करके भेजा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं दूसरों को शासन करूंगा, उनको मारूंगा, ये ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, हम इनको दुरुस्त कर देंगे, घर छोड़ करके इसके लिए आए ना भजन करने के लिए आए, इन सब चीजों को विशेष रूप से सोचो, शासन करने के लिए नहीं आए। तुम अपना भजन करो, गुरु की सेवा करो, और जो कर रहा है गुरु उसके लिए देखेगा सुनेगा करेगा, उसकी तुम समालोचना भी मत करो, कुछ भी मत करो, तुम अपना भजन करो यदि कल्याण चाहते। यदि सभी शिष्य ऐसे ही बन जाए तो तुम स्वर्ग वैकुंठ बन जाए, तो फिर कोई चीज की कानून की और ये नियम टियम कोई की आवश्यकता नहीं। इसलिए सहिष्णु हो, मधुर भाषी हो, अपने गुरु भाइयों के साथ भी प्रेम पूर्वक रहे, उनका दोष न देखें, उनका दोष देखने वाला दूसरा है, दंड देने वाला दूसरा है। यदि किसी बात में शंका हुई तो उसके लिए परिप्रश्न करें, चैलेंजिंग मूड में नहीं, ना तो सब चौपड़ हो तो पहले गुरु करने के समय में ये पहले देख लेना चाहिए परीक्षा, जो हमारा गुरु ठीक है, जब ठीक है तो शास्त्रों के मुताबिक हरि भक्ति विलास में और सब जगहों में जो लिखे हैं लक्षण उसके अनुसार में रह करके तुम सेवा करो। क्या लिखा है सुनो, सदवंश में पन मैं, किंतु यदि चमार है तो सदवंश का ही चमार का ही सदवंश देखा जाएगा। जैसे कौन थे ना रघुनाथ दास के, जिसके यहाँ जाते थे भोजन कर, कालिदास लाहिड़ी जाते थे, झाड़ू ठाकुर, ये उत्तम वंश है। ऐसे ही विनीत, विनीत माने क्या, नम्र, नम्रता से बातचीत करें।
प्रिय दर्शन
जरा सुंदर सुकांत हो, ऐसा बातचीत करने में एकदम क्रोध से बातचीत करते हैं ये सब नहीं, आंखें लाल हो जाती हैं ये सब नहीं हो। बहुत अधिक बोलते हैं, बागा डंबर दिन भर करते रहते हैं, बात नहीं कुछ नहीं, अब बस ऐसा नहीं, परिमित रूप में बोले, जो जरूरत है उतना ही बोले, बेसी नहीं बोले, नहीं तो झगड़ा जरूर है। परिमित बात, फिर
सत्यवादी
जिस चीज को वो सत्य समझता है उसी को बोले, किंतु हो सकता है कि उसका सत्य गलत हो, वो गुरु विचार करेंगे। हाँ चलो, सत्य बोले, झूठ ना बोले, गुरु जी से वैष्णव से किसी से भी झूठ ना बोले, शुद्ध आचार होने चाहिए। शुद्धाचारी माने क्या, सदाचार दो प्रकार के, एक स्त्री प्रसंग से दूर, या स्त्री भी हो तो पुरुष प्रसंग से दूर, और ठाकुर जी की रसोई बने आचार से, या ठाकुर जी की सेवा अर्चन हो सदाचार पूर्वक, भजन हो सदाचार पूर्वक, सब वैष्णव के लिए जो हरि भक्ति विलास इत्यादि में आचार दिखलाए गए हैं उसके अनुसार में आचार। ऐसा नहीं कि रसोई बन रही है और उसमें रसोई हो गए तो नमक उसमें डाल करके या मसाला वसाला वैसे ही डाल रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, उधर खड़ांग पहन करके वो चप्पल पहन करके रसोई बना रहे हैं, ये सब नहीं। पानी है तो पानी के घड़े में अपनी अंगुली डाल दिया, नख से पानी छुआ हुआ कभी भी ठाकुर जी के भोग में नहीं लगता। आपने नमक दिया और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर दूसरी चीज में नमक दिया तो ईठो हो जाएगा, ईठो मैंने सकरी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रसोई बनाने के पहले शुद्ध रहना चाहिए रसोई। जब भोग लग जाएगा तब उसमें स्पर्श का दोष नहीं आएगा या किसी चीज का दोष नहीं होगा। नबे गलो कुथा रख ले, इस सब का विचार होना चाहिए।
कीरे एखने कांटा
बुद्धिमान हो, गुरु जी के मन के भाव को समझ करके, वैष्णव के मनोभाव समझ करके वैसी सेवाएं, इसमें बुद्धिमान होना चाहिए। दंभ दंभ इन माने अहंकार न हो, मैं बहुत जानता हूं, मैं बलिष्ठ हूं, 10-20 को मार डालूंगा यदि कोई ऐसा करेगा तो। ये सब दंभ शरीर का बल, मैं बुद्धिमान हूं, बहुत शास्त्र पढ़ा हूं, किसी चीज का दंभ नहीं होना चाहिए। काम भगवत भक्ति और गुरु सेवा के अतिरिक्त, वैष्णव सेवा के अतिरिक्त, भगवत भक्ति हो इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की कामना न हो। कामना यही हो जो गुरु जी को कैसे प्रसन्न करें, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, हमारी भक्ति कैसे उत्तरोत्तर बढ़े। गुरु भक्ति विशिष्ट, गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु जी के इच्छा अनुसार में मैं सब काम करूंगा, क्योंकि असदगुरु को सदगुरु नहीं बना करके पहले ही उसने ठीक रखा है, सदगुरु का पददर्शक है इसलिए, और नहीं तो असदगुरु करने से ये सब जितने चीजें हैं सब नष्ट हो जाएंगी। सदगुरु के बदले में असदगुरु करेंगे और असदगुरु को देकर के फिर 2 दिन में अश्रद्धा हो जाएगी, छोड़ करके चले जाएंगे या वही आपको हटा देगा। सब समय में सेवा में तत्पर रहने वाला हो, गुरु जी की के शयन के पश्चात में सोए और गुरु जी से पहले उठ जाए। गुरु यदि 3 बजे उठते हैं तो सेवक को कितने बजे उठना है? 2:30 बजे पहले प्रस्तुत हो जाओ, उनके बाद में जब उठेंगे भजन करेंगे उनकी सारी व्यवस्था करो और सारा दिन उनकी सेवा में तन्मय रहो। कहते हैं कि इतना नाम करना है करेंगे, शास्त्र पढ़ो और सब जितना जो कुछ कहेंगे हरि भजन के अतिरिक्त तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए तुम करेगा किंतु हो जाएगी गुरु सेवा। यदि गुरु कहते हैं कि तुम 50,000-1,00,000 नाम करो तो ये गुरु का आज्ञा पालन हुआ तो ये गुरु को लाभ हुआ न शिष्य को लाभ हुआ? किसका हुआ, किसका हुआ जी? अरे तो तुम्हारे लिए हुआ है, 50,000 नाम किया गुरु जी के लिए, उन्होंने आदेश दिया, किसके लिए किया? तुम्हारे लिए। गुरु जी ने कहा ठाकुर जी का मंदिर में जाकर के स्नान करके पवित्र हो करके इनका अर्चन करना, गुरु जी को उससे लाभ क्या हुआ? अरे तुम्हारा तो कल्याण है, इसलिए गुरु जी की सेवा नाम हो जाता है किंतु होती है तुम्हारे ही, तुम्हारा ही कल्याण होता है। तो इस तरह से गुरु जी के पहले उठे, गुरु जी से पीछे सोए, जैसा कहते हैं वैसा आचरण करें, तन मन वचन सब प्रकार से उनकी सेवा करें। जब ही जो चाहते हैं, क्या चाहेंगे? तुम्हारे लिए भजन के लिए, उत्तम उन्नति के लिए कुछ कहेंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं कहेंगे, ये सब करो। यदि गुरु जी का तुम पैर दबा रहे हो तो तुम वो गुरु जी की तुम क्या कर रहे हो ये समझो, उससे तुम एक बहुत बड़ी चीज लेना चाहता है। पैर दबाएगा साधारण चीज और तुम चाहते हो उसके बदले में क्या चाहता है? कृष्ण प्रेम चाहता है, तो ये समझो। इसलिए अपने लिए स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कहेंगे। लोगों के समझ में नहीं आए, नहीं आता। इसके बाद में अच्छा, यदि गुरु किसी को प्यार करते हैं ना, उसको आदर देते हैं तो तुम जरूर उसको प्यार करो, आदर करो, अन्यथा विरोध होगा गुरु में। तुमने क्या कहा? यदि गुरु किसी को स्नेह करते हैं तो तुम भी क्या करो, उसके प्रति प्रीति प्यार रखो। गुरु जी ने कहा जैसे वो आए हैं थोड़ा सा तंबाकू उनके लिए चढ़ा देना तो और उनको दे आना तो कहे ये हमसे नहीं होगा, हम चिलम चढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। ऐसा नहीं, जो कहते हैं वो करो, क्योंकि सदगुरु हैं। प्रभुपाद जी ने एक बड़े राज्य के स्टेट के दीवान थे, दीवान माने मंत्री, प्रभुपाद के पास में हरि कथा सुनने के लिए आए। उनका नाम मुझे राम भूल गया, तो वो आए, बहुत स्टेट के मालिक प्रधानमंत्री, वो गुड़गुड़ी पीते थे। तो प्रभुपाद उनको हरि कथा कर रहे हैं और उनको चाहिए 15-15 मिनट में गुड़गुड़ी पीना। उन्होंने परमानंद को कहा, देखा जैसे ये बार बार उठते हैं जाते हैं तो समझ गए, कहे गुड़गुड़ी यहीं ला करके उनका बना करके और इनको दे जाना, तो ये उठे नहीं, हरि कथा सुनी। परमानंद जी ने ऐसा ही कोई भी कुछ धर नहीं किया, लेकर के वहीं पर काजे से ही है। बड़े लज्जित हो काजे से उठा करके फेंक दिया, वो टूट गया और जीवन में कभी नहीं दिया। ये सब विचार रखना चाहिए, ये मत विचार कर जो गुरु क्या कर, गुरु तुमसे अधिक विचारवान है, बहुत विचार परमार्थ देखते हैं। तुम लोग देखागा संसार का नियम टियम ये इसका कोई मतलब नहीं है। दो चीज है, एक है प्रीति और एक है वैराग्य। हम असत काम नहीं करते हैं ठीक है, हमें संसार से वैराग्य है। इतना होने पर भी यदि कृष्ण के प्रति गुरु के प्रति प्रेम प्रीति नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हमको चाहिए क्या? गुरु जी के प्रति प्रीति चाहिए, भगवान के प्रति प्रीति ऐसी चाहिए जो नाम ले लेते लेते चित्त द्रवित हो जाए। यदि हमने वैराग्य के लिए ही सारा जीवन नष्ट किया और ये चीजें नहीं, अफर्मेटिव चीजें नहीं हुई, सकारात्मक चीजें नहीं हुई और वैराग्य हो गया, हम रूखा सूखा खा करके जीवन निर्वाह करते हैं, इस सबसे क्या हुआ? तत्व ज्ञान हो गया, किंतु प्रीति जो थोड़ी सी एक चीज है, ये प्रीति गुरु के प्रति नहीं हुई, वैष्णव के प्रति प्रीति नहीं, शास्त्र के प्रति प्रीति नहीं, भगवान के प्रति प्रीति नहीं, तो इसका मूल्य क्या है? क्या मूल्य? बेकार। उस विद्या का, उस वैराग्य का, उस तत्व ज्ञान का कुछ भी मतलब नहीं। एक आदमी कुछ नहीं जानता, उसको न तो वैराग्य है न कुछ है, और श्रीरंगम में जैसे वो ब्राह्मण गीता पाठ करते हुए रोता था, महाप्रभु जी ने कहा जी गीता पढ़ते हो तो रोते क्यों हो? तो वो उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाता था, अनुसार विचार का उच्चारण भी नहीं था। उसने कहा जी जब मैं गीता खोलता हूं तो देखता हूं कि कृष्ण जी रथ पर खड़े हैं और अर्जुन विषण होकर के बैठे हुए हैं धनुष बाण छोड़कर, और कृष्ण उनको मुस्कुराते हुए उपदेश दे रहे हैं। ये देख करके मेरा चित्त गदगद हो जाता है, आंख से आंसू आने, मैं रोता नहीं हूं किंतु हो जाता। एक बहुत बड़ा भारी विद्वान तत्वज्ञानी, संस्कृत का विद्वान भी, भक्त भी हो, आचरण करने वाले, उसके सामने लगेंगे? इसलिए हमको जरूरत है प्रेम की, श्रद्धा की, ये इसके लिए हमको देखना चाहिए। साधारण लोग इस चीज को नहीं देख पाते, देखते हैं कि ये कैसे हैं, अरे भारी विद्वान है कि नहीं, वैरागी है कि नहीं, लंगोटी केवल धारण करते हैं, मरकट वैराग्य हो सकता है। इसलिए यह सब प्रेम के प्रति यदि उसका लक्ष्य हो तो वो सत शिष्य है। और बोलो, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मैंने क्या है? उसकी इंद्रियां अपने अधिकार में हो, अभी किसी ने कुछ कहा क्रोध आ गया बस लड़ पड़े, नहीं, मन को ऐसे कंट्रोल में रखो जब जब क्रोध की जरूरत है तो क्रोध हो नारद की भांति और एक सेकंड में उसको दमन कर सके। अपनी समस्त इंद्रियों पर कंट्रोल रखो, कोई चीज अच्छी आई सामने वाह बस दौड़ करके उसको, भगवान का भोग लगा नहीं लगा दौड़ करके खा लिया या चुरा करके रख दिया पीछे खाया, इंद्रियां उसकी संयम नहीं। इंद्रियां वशीभूत होनी चाहिए सभी, आंख की इंद्रिय, कान की इंद्रिय, जिह्वा की और जितनी भी इंद्रियां हैं सब ठीक होना चाहिए। जितेंद्रिय व्यक्ति हो तब वो सत्शिष्य हो सकता है, नहीं तो गुरु की सेवा के लिए गुरुजी कुछ अस्वस्थ अभिनय करने लगे, ये हम जाकर के क्या करेंगे?
कोई जरूरत
सेवाई में रुचि नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, और जब गुरु में श्रद्धा नहीं होगी ईश्वरपुरी पाद की भांति माधवेंद्रपुरी में, तो रामचंद्र की खांकी दशा होगी, रामचंद्रपुरी की, और गुरु जी बाहर कर देंगे, उसे स्नेह नहीं करेंगे। चलो, जड़ वस्तुओं में ममता ही, जड़ वस्तुओं में, जड़ वस्तु को इसको इस रूप में लिखो, देखो, भगवत भक्ति के काम में नहीं आने वाली विरोधी वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहे। भगवत सेवा के अतिरिक्त और जो दूसरी वस्तुएं हैं उसमें अनासक्त रहे। चलो, तदीय वस्तु में आसक्ति हो, आलस्य रहित हो, आलस्य नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अच्छा अब उठेंगे, अब उठेंगे, अब हरिनाम करेंगे, अब हरिनाम करेंगे, और होता नहीं, दो चार माला फिर लिया, फिर बस। कोई भी व्यक्ति गृहस्थ में रहे, त्यागी रहे, उसको किसी न किसी प्रकार से दो तीन घंटे का समय मिल जाएगा। इसमें 16,000 25,000 या 1,00,000 नाम करने के लिए सहज ही उसको समय मिल जाता है, इसलिए उसको आलस्य नहीं करना चाहिए किसी भी काम में। जो आज करना है वो उसको, मैंने आज करना है उसे अब कर लो, कल के लिए मत छोड़ो। नियम में शिथिलता मत लगाओ, जितना हम कर रहे हैं 50,000 कर रहे हैं, 75,000 कर रहे हैं, 1,00,000, ये हमको करना है किसी भी प्रकार से, और काम खाना पीना और का समय हम रख लेंगे, किंतु इसको जरूर करना है जितना हमने नियम किया। बड़े प्रीति के साथ में चिच्च चंचल न रहे, तत्व की जिज्ञासा करने की भाव, तत्व की, कृष्ण क्या तत्व है, भक्ति क्या तत्व है, माया क्या तत्व है, जीव तत्व क्या है, ये सब के लिए जिज्ञासा होगी। नहीं जिज्ञासा होगी, पूछना, पूछेंगे हम गुरु से परिप्रश्न के माध्यम से। गुरु में दृढ़ मित्रता विशिष्ट, गुरु जी को प्रणाम कर लिया, जब जा रहे हैं तो 1 माइल दूर से उधर से देख करके बस प्रणाम करके चले गए, ऐसा नहीं। विश्वम्भेन गौ सेवा, गुरु जैसा हितकारी हमारे विश्व में कोई भी नहीं है, इस चीज को समझो। सबसे विश्व ब्रह्मांड में हमारे हितैषी हैं तो कौन है, कृष्ण भी पीछे हैं, पकड़ करके लाने वाले परमार्थ में कौन लिया, गुरुदेव। इसलिए उनके प्रति दृढ़ प्रीति युक्त सेवा। तरह कितना 7:30 बजे, तो इस तरह से समझो, ये योग्यता। ऐसा शिष्य यदि होगा तो गुरु की सेवा करके उनके उपदेशों से उनके आचरण से बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, और जो लोग ऐसे नहीं हैं वो परमात्मा, उनको लाभ नहीं होगा, कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिन के बाद में चले जाएंगे, फिर संसार में जाएंगे, फिर न जाने क्या होगा। इसलिए इन सब चीजों को, उपदेशों को पालन करके गुरु जी के विचारों को समझो, ये क्या चाहते, और तब भजन करो। आज यहीं तक रहे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च।